ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത, ചാപ്റ്റർ 13, ടെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 15. ഭഗവാൻ ഹമേ ഗിയ യാനി ജാനനെ യോഗ്യ ജോ ചീസേ ഹൈ ഉൻകെ വിഷയ മേ ബതാ രഹേ ഹൈ. പഹലെ ഭഗവാൻ നെ ആത്മാ കെ വിഷയ മേ ബതായാ കി വോ അനാദി ഹൈ ഔർ മേരെ ആധീൻ ഹൈ. ഫിർ ഭഗവാൻ ശ്രീ കൃഷ്ണ നെ 14 മേ ബതായാ കി ജോ പരമാത്മാ ഹൈ വോ ഉസ്കെ ബഹുത് സാരേ ഹാത്ത് ഹൈ, ആഖേ, മൂഹ്, നാക്, ഹർ ചീസ് ബഹുത് സാരി ഹൈ. ഇസീ ചീസ് കോ ആജ് ഭഗവാൻ ശ്രീ കൃഷ്ണ ഔർ ഭി ക്ലിയർ കർക്കെ ബതാ രഹേ ഹൈ കി വോ ഉസ്കെ പാസ് ബഹുത് സാരേ തോ ഇന്ദ്രിയ ഹൈ, ലേക്കിൻ ഫിർ ഭി വോ ഇന്ദ്രിയ സേ പരേ ഹൈ, ഇന്ദ്രിയ രഹിത ഹൈ. വാസ്തവ മേ ഭക്തോ, യഹ ശ്രദ്ധ കാ ടോപിക് ഹൈ, യഹ ഭാവ കാ ടോപിക് ഹൈ, ക്യോകി ഭഗവാൻ ശ്രീ കൃഷ്ണ നേ 4.39 മേ സാഫ് സാഫ് കേ ദിയ, ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതെ ജ്ഞാനം. ആപ്കെ അന്തർ ജിത്നി ശ്രദ്ധ ഹോഗി ഉത്നാ ഹി ആപ്കോ ഇസ് ജ്ഞാന കോ സമജ് സകോഗെ. തോ ഈ ശ്രദ്ധ പ്രാപ്ത കഹാ സേ ഹോഗി, അബ് ഹമേ സമജ്നാ ഹൈ. അബ് ശ്രദ്ധ കോയി ഐസി ചീസ് തോ നഹീ ഹൈ കി ഹം മാർക്കറ്റ് സേ ലേക്കർ ആയേ, മേ 2 കിലോ ശ്രദ്ധ ദേ ദോ, മേ കോ ഭഗവത് ഗീത സമജ്നി ഹൈ. യീ ശ്രദ്ധ പ്രാപ്ത ഹോതി ഹൈ ഗുരു കൃപ സേ. തോ സബ്സേ പഹലെ ഹം ഗുരു മഹാരാജ് സേ പ്രാർത്ഥന കരേംഗേ കി ഹമേ ശ്രദ്ധ का दान दे, ताकि हम भगवान के वचनों और गुरु महाराज के भावार्थ को अच्छे से समझ सके. ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलाक्य चक्षुरुन्मीलितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चैप्टर 13, टेक्स्ट नंबर 15. सर्वेन्द्रिय गुण भासम सर्वेन्द्रिय विवर्षितम അസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃച. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം, സർവേന്ദ്രിയ സർവ മത്ലബ് സബ് ഇന്ദ്രിയ മത്ലബ് ജോ ഹമാരെ ഇന്ദ്രിയ ഹൈ നാ സെൻസസ് ഓ, ഓർ ഗുണാഭാസം, ഗുണ മത്ലബ് ഉൻകെ ഗുണ ജോ ഹൈ ഇന്ദ്രിയോ കെ, ആഭാസ് മത്ലബ് മൂൽ സ്രോത, ജിത്നേ ഭി ഹമാരെ ഇന്ദ്രിയ ഹൈ ഉൻ उनके मूल स्रोत क्या है, मतलब ये आती किधर से है, उनके अंदर ये गुण कौन से गुण है. इंद्रियों में देखे, हमारे कर्म इंद्रियों में आंखों में देखने का गुण है, कानों में सुनने का गुण है, नाक में सूंघने का, जिह्वा में टेस्ट, और दूसरे हमारे जो इंद्रिय है, हाथों में काम करने की शक्ति, ये सब आती किधर से है, उनका स्रोत क्या है, भगवान ही है. आगे बोलते हैं, सर्वेन्द्रिय विवर्जिता, सर्व मतलब सब, इंद्रिय मतलब इंद्रिय, विवर्जित मतलब विहीन है. हमारी इंद्रियों को पूरा पावर देते हैं, लेकिन वो इंद्रियों से विहीन है, मतलब उनकी. अब यहाँ पर थोड़ा सा द्वंद्व लग रहा है ना, हम लोगों को ऐसा लग रहा है ऑपोजिट बात हो रही. पहले बोला उसके तो बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे है ना पैर हैं, बहुत सारे मुंह हैं, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सर्वेंद्रिय विवर्जित, विवर्जित मतलब उसके पास नहीं है, वो इंद्रिय रहित है. इसको श्री प्रभुपाद जी बहुत अच्छा समझाएंगे, ठीक है. आगे पढ़ते हैं, असक्तम सर्वभृत, असक्त मतलब अनासक्त है, वो किसी चीज में कोई आसक्ति नहीं रखते. सर्वभृत यानी प्रत्येक का पालन करता. अब देखो होता क्या है, जब किसी चीज का हम पोषण करते हैं, किसी चीज को संभाल के, अगर कुछ दिन भी हमारे साथ कोई रहता है जिसको हम अपनी केयर में रखते हैं, तो उसके प्रति आसक्ति हो जाती है ना. लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, असक्तम सर्वभृत चैव, वृत चैव मतलब सबका पालन तो करते हैं सर्वभृत हर किसी का, लेकिन फिर भी वो किसी में आसक्ति नहीं रखते. निर्गुणम वो गुणविहीन है, मतलब निर्गुण मतलब तीनों गुणों से परे हैं. गुण भोक्तृ च और गुणों का स्वामी, यानी कि तीनों गुण जो है वो उनसे आए हैं, लेकिन वो उनसे परे हैं, वो तीनों गुणों के स्वामी होके हुए भी. अब देखो जो चीज हम जिसके स्वामी हैं वो हम पर टच होती है ना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण साधारण नहीं है, इसलिए ये सारी क्वालिटीज भगवान श्री कृष्ण में होना स्वाभाविक है. अब अर्थात यहाँ पर कहा गया है, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृच, यानी परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं, वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं, वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। इस चीज को श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तरीके से समझाएंगे और हम प्रार्थना करते हैं गोपीनाथ से और श्रील प्रभुपाद जी से कि हम उनके भावार्थ को समझ सकें। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह भौतिक इंद्रिय नहीं है उनके पास। यानी कि जैसे हमारी कैसे भौतिक इंद्रिय है, सांसारिक, देखने में क्या लगता है कि भगवान के भी हमारे जैसे हाथ हैं, भगवान की भी आंखें हैं, और हमें ऐसा लगता है कि भगवान भी हमारी तरह से ही अपनी इंद्रियों से कार्य करते होंगे। लेकिन यहाँ पर क्यों कहा गया ऐसा कि सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, ऐसी नहीं है जैसे हमारी है। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं। अब यहाँ पर हमारी रियलिटी बता रहे हैं कि जो हम ये यहाँ पर नजर आ रहे हैं ना आपको, जिसमें जिसमें हाथ हैं, पैर हैं, ये सब भौतिक है ना, ये सब हार्ड मास से बनी हुई हैं, गंदगी है। हमारे शरीर तो यक सारा गंदा है, कितनी दफा हम लोग सुनते हैं इसके बारे में। तो ये क्यों गंदा है? क्योंकि भौतिक है। भौतिक चीज में कभी भी देखने में उसको ऐसा, जब इंद्रिय के बारे में सोचती सुनती हूँ ना या बोलना होता है तो मुझे राधा गोविंद स्वामी की एक बात बहुत याद आती है, शायद मैंने पहले भी शेयर की थी, कि हम अपनी इंद्रियों से कितना प्यार करते हैं, अपने हाथ अपने पांव उसको कितना संवारते हैं। वास्तव में ये क्या, भगवान ने सिर्फ इसको एक प्लास्टिक की जैसे कोई चीज के अंदर गंदी चीजें नहीं भर दी हूँ और ऊपर से शॉपर अच्छा हो, मतलब पैकिंग अच्छी कर दी है बस ऐसे, और अगर निकाल के देखा जाए तो इसके अंदर एक तो चमड़ा है गंदा सा, ब्लड है, बोन्स है, नाखून है, बाल है, या और इतना गंदा गंदा अंदर सब भर के उसको एक अच्छे से पैकिंग में हम लोगों को भेज दिया है, तो हम उसको ही खाली समझते हैं कि अच्छा है। लेकिन खैर यहाँ पर तो क्या बता रहे हैं, वास्तव में जीवों में भी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। आध्यात्मिक मतलब जिसमें ये सब गंदगी नहीं होती है। हमारा एक ऐसा शरीर है, हमारा एक ऐसा वास्तविक आध्यात्मिक रूप है जिसको, जो हमारा रियल स्वरूप है, और वो गोलोक वृंदावन धाम में रहता है। जब हम हमारी उन्नति होती है ना, हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमें सब कुछ पता चलता है। एकदम परफेक्ट शरीर है वहां पर, हमारा ऐसा शरीर है जिससे हम, इसमें ये भौतिक कलमश नहीं है। हमारा पूरा, हमारा कौन सा स्किन का कलर क्या है, हम दिखते कैसे हैं, हमारा हमारे हाथ कैसे हैं, पांव कैसे हैं, हम बोलते कैसे हैं, हमारा स्वभाव कैसा, ये सब वास्तविक में है। उसी दिव्य शरीर के साथ हम प्रेमानंद लेते हैं भगवान की गोलोक वृंदावन धाम में। वास्तव में क्या है कि हम सबका एक दिव्य शरीर गोलोक वृंदावन धाम में सुप्त अवस्था में है, मतलब अभी वो विश्राम कर रहा है वहां पर, क्योंकि हमारा अभी यहाँ पर हम बद्ध जीवन में है ना, हमारी आत्मा इस शरीर में, ये जो भौतिक शरीर उसमें है। अब ये आत्मा जब इस भौतिक शरीर के कलमशों से, गंदगी से पवित्र हो जाएगी, जब हम भगवान का पवित्र नाम का जप करेंगे और हमारे अंदर पवित्रता आ जाएगी और हम भगवान को प्राप्त करने के लिए गोलोक वृंदावन धाम में चले जाएंगे ना, तो ये आत्मा हमारे उस सोई हुई इंद्रिय, जो वहां पर सोया हुआ हमारा शरीर है ना, उसके अंदर प्रवेश कर देगी। और जब हम उसके अंदर प्रवेश हो जाएंगे ना, फिर हम उठेंगे, जैसे हम कैसे रात को सोते हैं, फिर सुबह ऐसे तो नहीं लगता कि हम लोग कितने टाइम से सोए, सुबह को फौरन से हमारी ड्यूटीज शुरू हो जाती हैं, ये करना है वो करना है, तो हमारी भी वहां पर नित्य सेवा है। जीव कृष्ण का नित्य दास है तो उसकी नित्य सेवा है, उसे पता है उसको क्या करना है। जैसे हम घर में उठते हैं, कैसे हमें पता होता है सुबह मुझे नाश्ता बनाना है, ये करना है वो करना, उठ के परेशान तो नहीं हो जाते, मैं पता नहीं क्या हूँ, मुझे क्या करना होता है, ऐसे तो नहीं होता, हमारी पहले से ड्यूटीज है। तो ये जो समय हम यहाँ संसार में गुजारते हैं वो बिल्कुल थोड़ा सा है, इसे हमें लगता है कि हम काफी टाइम से संसार में, लेकिन गोलोक वृंदावन धाम में बस ऐसा ही है कि हम थोड़ी देर सोए हैं और सपने में ये सब, ऐसे बोलते ना, ये जीवन एक सपने की तरह है। तो सपना वो जो सो रहा है वही देख रहा होगा ना। तो वास्तव में जो हमारा रियल स्वरूप है वो गोलोक वृंदावन धाम में सो रहा है, और वो सपने में ये सब गंध देख रहा होता है। और सपना जब सक्सेस होता है तब क्या होता है, जैसे हैप्पी एंडिंग क्या है उस सपने की, कि उस भौतिक कलमश से हम पार हो जाए और भगवान को प्राप्त कर ले। और उस जो दिव्य शरीर में जब हमारी आत्मा प्रवेश कर जाती है ना, फिर हम उस दिव्य शरीर के द्वारा भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। हम ऐसा फील हो, अब देखो भगवान की इंद्रियां पवित्र हैं, भगवान की इंद्रियां भौतिक नहीं है, वो सब स्पिरिचुअल हैं, तो हमें भी भगवान के साथ प्रेम करने के लिए ऐसा ही चाहिए ना। तो वैसा है हमारा स्वरूप, ऐसा बताते हैं हमें, शास्त्र में आता है, राजाराम प्रभु हमें बहुत अच्छे तरीके से ये चीज को डिक्लेयर करते थे। आगे बता रहे हैं, वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं, क्योंकि हम बद्ध जीवन में हैं, हम यहाँ पर हैं, तो वो भौतिक चीजों से, भौतिक ये तत्व है ना, कौन सी तत्व, जैसे हम पढ़ते हैं ना 24 तत्व, जैसे मैं आपको शरीर के बारे में बता रही थी, 5 महाभूत, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, विषय गुण, ये सब इनसे आच्छादित रहती है, यानी इनसे ढकी रहती है। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। अब जो यहाँ पर हमारी इंद्रियां जो भी कार्य कर रहे हैं, तो ये जो पदार्थ हैं उनके द्वारा वो कार्य कर रही हैं, जो 24 तत्व हैं उनके द्वारा। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती, लेकिन भगवान तो इन भौतिक चीजों से परे है ना, तो उन पर ये चीजें इफेक्ट नहीं करती कृष्ण पर, उनकी, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से, सॉरी, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं। भगवान की इंद्रियां ये भौतिक नहीं होती जैसी हमारी होती है, लेकिन इंद्रियां हैं, भगवान निर इंद्रिय नहीं है, निराकार नहीं है, उनकी इंद्रियां हैं, वो साकार है। भगवान श्री कृष्ण, कोई ऐसे बोलते ना, भगवान की इंद्रियां नहीं है, भगवान निराकार, ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए। राधा गोविंद स्वामी बोलते हैं इस तरह से, अगर हम इसे प्रचार करते ना, तो भगवान से प्रेम भी कोई नहीं कर सकता, कोई इंद्रिय रहित से कोई कैसे प्रेम करेगा। तो ऐसा प्रचार करने वाले से भगवान खुश नहीं होते। देखो भगवान हमारे बाप की तरह है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना पितामह, तो अगर कोई बेटा ऐसे बोलना शुरू कर दे, मेरे बाप के हाथ नहीं है, मेरे बाप के पांव नहीं है, मेरे बाप की आंखें नहीं है, मेरा बाप निराकार है, तो उसके बाप को कितना बुरा लगेगा। इस तरह से भगवान को भी बहुत बुरा लगता है, भगवान का कभी भी निराकार प्रचार नहीं करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं उनकी इंद्रियां दिव्य है। अब दिव्य है तो ये प्रॉब्लम है ना आम लोगों के लिए, उनको दिव्यता नजर नहीं आती, इसीलिए बोलते हैं चैतन्य ब्रह्मा जी बोलते हैं, प्रेमंजन सुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ऐसे बोलते हैं, अगर भगवान श्री कृष्ण को देखना है, उनकी इंद्रियों को देखना है ना, तुम्हारी ये भौतिक आंखें काम नहीं आएंगी, उसके लिए अपने हृदय के नेत्रों पर प्रेम का अंजन, यानी अपने हृदय में प्रेम भर के जवाब देंगे। और संतः सदैव हृदयेषु विलोक, हृदय के विलोक जो है, आपके हृदय की जो नेत्र हैं, उनके जरिए आप भगवान को देख सकते हो, जब उस हृदय में प्रेम उत्पन्न करते हो। तो यहाँ पर बोलते हैं उनकी दिव्य इंद्रियां होती हैं, अतएव निर्गुण कहलाती है, उनके वो जो भौतिक गुण है ना, कौन से, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब भगवान में नहीं है। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती हैं। भौतिक आवरण यानी कि जो मादी कलमश है ना, मादी गंदगी, मादी चीजें, उससे भगवान की इंद्रियां दूर रहती हैं, उनमें नहीं होती हैं। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों जैसी नहीं होती, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं। अब हम क्या सोचते हैं, भगवान भी हमारे जैसे होंगे, अगर भगवान साकार हैं तो हमारे जैसे, लेकिन भगवान हमारे जैसे नहीं है, वो दिव्य हैं। हमारे अंदर दिव्यता कितनी है, चलो बताओ, हमारे अंदर जिसके बारे में इतना इतना हम बखान करते हैं ना, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्य न माने शरीर नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये सारे गुण जो इतना इतना बखान किया भगवान श्री कृष्ण ने सेकंड चैप्टर 20, 22, 23, ये सब किसके बारे में बताया, जीव के बारे में बताया ना। लेकिन जीव वो जो इसके अंदर है, जीव मैं थोड़े हूं, मैं तो भौतिक हूं, कचरा है सारा। अंदर जो बैठा हुआ आत्मा, उसका बखान है, वो है कितना, बालाग्रे शत भाग पुनः शतदा कर, यानी कि एक बाल के 10,000वें हिस्से जो जैसी तो हमारी हैसियत है, एक बाल का अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, क्या हैसियत होगी उसकी। तो हमारे जैसी नहीं है भगवान, पूरे के पूरे भगवान है, सर से लेकर पांव तक एकदम कृष्ण है, एकदम दिव्य है। तो इसे बता रहे हैं कि उनकी इंद्रियां हमारे जैसी इंद्रियों जैसी नहीं है, यद्यपि वे हमारी समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत हैं। अब यहाँ पर भगवान की अचिंत्य भेदाभेद शक्ति के विषय में बता रहे हैं कि उसका चिंतन नहीं कर सकते, हमारी भौतिक इंद्रियां उसको ऑब्जर्व नहीं, उसको अडॉप्ट नहीं कर सकती इन चीजों को कि भगवान कैसे, हमारी सारी इंद्रियों के कार्यों के स्रोत है, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं। और आगे बताया है जो कलमश रहस्य होती है, यानी कि उनमें कोई कलमश नहीं होता, उनमें कोई मादी आलूदगी नहीं होती, कोई गंदगी नहीं होती। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्वेता उपनिषद 3.19 में बताई गई। क्या बताया? अपाणी पादो जवनो गृहं गृहीताम, अपाणी पादो यानी श्लोक में हुई है, ऐसा बताया गया है कि भगवान के हाथ भौतिक कलमशों से ग्रस्त नहीं। अपाणी पादो यानी पानी बोलते हैं ना हाथों को, और जवनों ग्रहति यानी कि वो ग्रहत नहीं होते हैं, ग्रस्त नहीं होते किससे, भौतिक कलमश से। ये भगवान की जो इंद्रियां होती हैं वो भौतिक नहीं होती है, इसलिए उनमें भौतिक गंदगी नहीं, अतः उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पर देखने में आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कुछ लिया नहीं, तो हम क्या समझते हैं कि खाते कैसे हैं, जैसे हम खाते हैं, खाने का तरीका यही है कि हम अपना हाथ डालें उसमें प्लेट में और उसके हाथ से उठाएं, माउथ में डालें, प्लेट खाली हो, ये तरीका खाने का। लेकिन ये तरीका तो हमारे खाने का है ना, क्योंकि हम भौतिक हैं, हम भौतिक चीज को भौतिक तरीके से ग्रहण करते हैं, लेकिन भगवान थोड़ी हमारी तरह भौतिक है, भगवान तो दिव्य है, इसी चीज को बता रहे हैं। अतएव उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है वे उन्हें अपने हाथों से ग्रहण करते हैं, लेकिन क्योंकि उनके हाथ दिव्य हैं और उनका वो खुद दिव्य हैं, वो उस तरह हमारी तरह से नहीं है, तो हमारी तरह से उनका व्यवहार भी नहीं है। बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है, उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, यानी कि भगवान के जिस तरह हाथ भौतिक नहीं होते उसी तरह उनके नेत्र भी भौतिक नहीं है, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, ऐसा नहीं कि होते ही नहीं है। अब यहाँ पर निराकार और साकार के विषय में बता रहे हैं कि देखो साकार है, लेकिन उन लोगों को कैसा लगता है जो निराकारवादी होते हैं ना, उन लोगों को समझ में आता है कि अगर वो साकार हैं तो हमारी तरह हाड़ मास से बने हुए होने चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन भगवान भौतिक कैसे हो सकते, भगवान तो दिव्य है। तो इनके बारे में बता रहे हैं कि उनके हाथ भी दिव्य है और उनकी आंखें भी दिव्य हैं, लेकिन हैं आंखें, ऐसा नहीं है कि वो हैं ही नहीं, अन्यथा वे कैसे देखते। अगर नहीं होती चलो ठीक है, वो लोग बोलते ना नहीं है भगवान की आंखें, निराकार है, अगर वो निराकार हैं तो वो देखते कैसे कि मेरे भक्त मेरे पास आए हैं, वो मुझे अर्पण कर रहे हैं। अगर वो बोल रहे निराकार, गीता को मान रहे, बोल रहे भगवान बोलते मुझे खिलाओ मैं खाऊंगा, तो उनके तो आकार है ही नहीं, उनके तो हाथ नहीं है, मुंह भी नहीं है, आंखें भी नहीं, देखेंगे कैसे प्रसाद रखा हुआ है तो मैं खाऊं या नहीं खाऊं। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि उनके हैं नहीं, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वो कैसे देखते और कैसे खाते। वे सब कुछ देखते हैं, भूत वर्तमान तथा भविष्य। अब उनके नेत्र इतने सजीव हैं, इतने आध्यात्मिक हैं कि हमें अपने नेत्रों से क्या नजर आता है, खाली जो अभी हो रहा होता है, प्रेजेंट मोमेंट ही हम देख सकते हैं ना अपने नेत्रों से। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के नेत्र हमारी तरह नहीं है, आध्यात्मिक है, तो वो सब कुछ देख सकते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं। अब उनकी रहने की जगह भी है, ऐसा नहीं है कि वो रहते ही नहीं है। और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया था, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या करेंगे। यानी कि भगवान श्री कृष्ण इतने दिव्य हैं कि उनको ये भी पता है कि आगे जाके क्या करने वाला है। ये मेरा बच्चा जो यहाँ पर अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो कौन कौन से कार्य कर रहा था पहले, अभी क्या कर रहा है और आगे जाके क्या करेगा, ये सब भगवान श्री कृष्ण जानते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। अब भगवद गीता में हुई है, कहाँ हुई है वो बात तो क्लियर करनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है 7.26। देखो ये हम इसलिए शेयर करते हैं, मुझे कोई मतलब और कोई उद्देश्य नहीं होता है, बस यही होता है कि हमें भगवद गीता में क्या क्या कहाँ कहाँ लिखा हुआ है वो हमें पता होना चाहिए। ये एक शास्त्र हमारे जीवन का आधार है। श्रीमद् भगवद गीता कोई शास्त्र नहीं है, ये हमारी लाइफ गाइड है। तो इसमें कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ लिखी हुई है श्री प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीके से बताया, और मैं इसको इसलिए क्लियर करती हूँ ताकि आप सबको वाकई में पता चले कि हाँ ऐसा है। और इसको अगर जब मैं बोलू ना कि इस श्लोक में लिखा हुआ है तो कृपया देख लिया करो ना। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने बोला भगवद गीता में ऐसा बताया, कहाँ बताया गया 7.26। क्या कहा भगवान ने, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, वर्तमान में घटित होने हो रहा है और भविष्य में घटित होने वाला है, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वे सब कुछ जानते हैं किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पांव नहीं होते, लेकिन वे आकाश में विचरण कर सकते हैं। यानी कि हम भौतिक नहीं है ना, बस ये डिफरेंस है कि वो हमारे जैसे भौतिक इंद्रिय नहीं, क्योंकि उनके आध्यात्मिक पांव होते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान निराकार नहीं है, उनके अपने नेत्र, अपने पांव, अपने हाथ, अपनी सभी कुछ इंद्रिय होती हैं। और चूंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, अतः हमारे पास भी ये सारी वस्तुएं होती हैं, लेकिन उनके हाथ, पांव, नेत्र तथा अन्य इंद्रिय प्रकृति द्वारा कलमश ग्रस्त नहीं होती। यानी कि होती है, श्री प्रभुपाद जी कितना अच्छा समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना सबको। उसमें क्या बताया कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है, लेकिन डिफरेंस क्या है, हमारा जो ये साकार शरीर है वो भौतिक चीजों से कलमश ग्रस्त है, भौतिक है, सारा कचरा भरा हुआ, और भगवान पूरे के पूरे आध्यात्मिक है। आगे बताया, भगवत गीता में भी पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंग शक्ति से यथा रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब संसार में आते हैं, भगवान ने कहा है ना 4.11, जन्म कर्म चमे दिव्यम। तो मैं जब संसार में आता हूँ तो मैं आप लोग की तरह ये गंदी जगह पर रहकर या फिर गंदे स्थान से या फिर गंदगी से गिरा हुआ थोड़ी आता हूँ। मैं तो, मेरा तो जन्म भी दिव्य है, मेरा तो कर्म भी दिव्य है। वे तो अपनी अंतरंग शक्ति से यथा रूप में प्रकट होते हैं, यानी जैसे कि तैसे संसार में आते हैं। संसार में आने के बाद अब क्योंकि हमारे पास भौतिक इंद्रिय है तो हमको दिखते हमारे जैसे, लेकिन वो हमारे जैसे थोड़े होते, वो तो भगवान है, वो तो परम पवित्र है। वे भौतिक शक्ति द्वारा कलमशग्रस्त नहीं होते हैं क्योंकि वह भौतिक शक्ति से भी के भी स्वामी हैं। भौतिक शक्ति जैसे उससे कलमशग्रस्त कैसे हो सकते हैं? अब स्वामी जो होगा, जो भौतिक शक्ति का स्वामी है, वो उसके अंडर कंट्रोल में थोड़े होगा, वो तो अपने कंट्रोल में रखता है उसको। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है। कहां पता? इस चीज को श्री रूप गोस्वामी उपदेशामृत श्लोक नंबर 7 में बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या पित्तो पतप्त रसनस्य नरोचिकानो किन्त्वादरदनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमाद्भवति तत्कतमूलहंत्री। कि भगवान श्री कृष्ण नख से शिख तक अमृत हैं, मिश्री की तरह मीठे हैं, लेकिन क्योंकि हम भौतिक कलमश से ग्रस्त हैं, इसलिए हमें समझ में नहीं आती उनकी जो दिव्यता है, वो हमें समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो भौतिक नहीं है और उनका सारे के सारे आध्यात्मिक है। लेकिन जैसे जैसे हम भगवान का नाम जपते जाएंगे और हमारे अंदर आध्यात्मिकता आती जाएगी, तो हम उनको समझ सकेंगे। उनका ऐसा बताया यहाँ पर कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है, उनका अपना नित्य स्वरूप होता है जो सच्चित आनंद विग्रह है, और जब हमारे अंदर से ये गंदगी निकल जाएगी, ये इतना अच्छा चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जनम हरिनाम संकीर्तनम, जो चेतो दर्पण जो है ना, वो आपका मार्जन हो जाएगा ना हरिनाम के संकीर्तन से। देखो इस कलयुग में नाम के अतिरिक्त और तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। चाहे कितना भी विज्ञान, कितना भी ज्ञान, कितना भी भौतिक हमें सब कुछ पता चल जाए, आध्यात्मिक भी पता चल जाए, लेकिन जब तक हम नाम का सहारा नहीं देंगे, जब तक हम कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं करेंगे ना, तो कोई चीज हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेगी। तो कृपया अपने नाम जप में सीरियस होना है हमें, बहुत अच्छे तरीके से भगवान का नाम श्रवण करके। तो कृष्ण प्रभुपाद ने बताया कि नाम में मन नहीं लगता ना, मैं इसके विषय में भी एक मेरा पास छोटा सा आर्टिकल है, वो मैं आपको भेजूंगी, लेकिन मन नहीं लगे तो नहीं लगे, रहने दो उसको, इंद्रियों को तो लगाओ, कानों से उन नाम को इतना गौर से सुनो, इतना मुंह से जब आप उस नाम को उच्चारण करो तो इतने प्रेम से, जिस तरह से कोई प्रीतम अपने प्रेमी का नाम कैसे लेता है, उसको कितना अच्छा लगता है, इतने अच्छे तरीके से। किसी को भी हम देखो जो जिससे प्रेम करते हैं, हम अपने बच्चे को किस तरह पुकारते हैं, कितना अच्छे तरीके से उसका नाम लेते हैं, छोटा बच्चा होता है, और या फिर जिससे हम प्यार करते हैं उसका नाम कितने अच्छे तरीके से लेते हैं, और कृष्ण का नाम कैसे लेते हैं, कृष्ण, ये तरीका नहीं है। भगवान का नाम लेने के लिए हमें अपने हृदय में प्रेम भरना होगा। अगर हम प्रेम से भगवान का नाम नहीं लेंगे ना, तो सुनेगा भी नहीं वो, उसको अच्छा भी नहीं लगता है जिस तरह से हम लोग नाम लेते ना। तो हमें उस स्थिति पर पहुंचने के लिए अपनी इंद्रियों को, मन नहीं लग रहा है ना, मन की तो बात ही नहीं है, मन थोड़ी, तुम्हारा मन नहीं लगता, हमारी हैसियत क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, लेकिन अर्जुन ने कहा था चंचलम हिमनम कृष्ण बलवान, इतना चंचल है, इतना बलवान है कि इसको वश में करना वायु रिव सुदुष्करम तस्या हम निग्रहम मन्ये, इस मन को वश में करना मुझे इतना मुश्किल लग रहा है कि हवा को वश में, हवा को कोई वश में कर सकता है, लेकिन अर्जुन कह रहा है मेरे को तो आसान लगेगा हवा को वश में करना, लेकिन मन को नहीं कर सकता, मन को छोड़ दो। श्री प्रभुपाद जी बोलते मन है ना, उसको दफा करो, जा रहा है ना किधर, जाने दो, लेकिन तुम अपने मुख से तो सही तरह से उच्चारण करो, अपनी इंद्रियों से तो, उसको कानों से सही तरह से सुनो तो सही, खुद ब खुद चित्त जो है वो वशप हो जाएगा। यही तरीका है, और कोई तरीका है ही नहीं, और कोई तरीका नहीं है, नहीं है, कदापि नहीं है। तो इसी को हमें अच्छे तरीके से करना है, नाम का स्मरण करना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं वे समस्त इंद्रियों से पूर्ण हैं, वे सारी संपत्ति के स्वामी हैं और सारी शक्ति के स्वामी हैं, वो उनके पास सब कुछ है, वो सब चीज के स्रोत हैं, वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण है। यानी कि उस, अब यहाँ पर ये भी समझ में आता है कि भगवान को है ना इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत नहीं है कि ऐसा करो ऐसा करो। हम कब जाते ना भगवान के पास, फिर भगवान को बताते हैं भगवान प्लीज ये काम कर दो, ऐसा करो ना प्लीज, मैं समझता हूँ ऐसा करोगे ना आप, तो कोई कोई बताते हैं भगवान ये मेरी योजना सफल कर दो ना, फिर देखना कैसे होता है भक्ति में उन्नति कैसे होती। अरे तुम बता रहे हो उसको, तुम्हारे पास जो छोटी सी अकल है, छोटी सी बुद्धि आई किधर से, बुद्धिम बुद्धिमतामस्मि, भगवान कहते हैं 7.11 में कि जितनी तुम्हारे अंदर बुद्धि है ना वो मैंने दी है तुमको, तो हमें उसको बताने की जरूरत नहीं है। सरेंडर का मतलब है तुम जो कर रहे हो वो सबसे बेटर है और वही मुझे कर, उसी में मुझे खुश रहना है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं श्री प्रभुपाद जी वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण है, ये भगवान के कुछ लक्षण है, भगवान की क्वालिटीज जो यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने बताई, भगवान ने खुद बताई कि भाई मेरे हाथ हैं, मेरे पैर हैं, मैं भौतिक नहीं है, बट वो सब आध्यात्मिक है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते ये सारी क्वालिटीज हैं, वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधि के साक्षी हैं। जो कुछ हो रहा है वो सब देखते हैं, साक्षी हैं। देखो ये परमात्मा का, भगवान का उल्लेख है। और इस सब जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये श्लोक नंबर कौन सा है, 15 है ना, श्लोक नंबर 23 तक इसको हमें समझने का पूरा प्रयास करना है। और जब 23 में आएंगे ना, तो एक और रहस्य का प्राकट्य होने वाला है। तो कृपया आप लोग थोड़ा गौर से सुनिएगा, थोड़ा सा सीरियस होके, ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ में आए। और सारी गतिविधियों के साक्षी हैं, जहां तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य है। यानी कि सारे शास्त्रों में बताया कि भगवान श्री कृष्ण दिव्य हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। तो दिव्य ही है भगवान श्री कृष्ण, यद्यपि हमें उनके हाथ पांव सिर मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं। यानी कि हम अपने चरम चक्षुओं से तो भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन वो होते हैं। और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं, तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। कैसे, संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। हृदय के अंदर जब प्रेम का अंजन लगा दिया जाता है हृदय के चक्षुओं पर, तो नजर आता है। कलमश ग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को नहीं देख पाते, अतएव निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि इंद्रियां उनकी कलमश ग्रस्त है, वो भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करते, भगवान से प्रेम नहीं करते। तो उनकी भौतिक इंद्रियों के द्वारा तो भगवान को नहीं देख सकते, क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित रहते हैं। तो यहाँ पर हमें इस श्लोक में भगवान परमात्मा के विषय में बताया गया है कि वो समस्त इंद्रियों के मालिक हैं, फिर भी उनकी इंद्रियों से रहित हैं। जो श्लोक लिखा हुआ है इसका मतलब है ऐसी भौतिक इंद्रियों से रहित हैं। आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं, लेकिन उनका हृदय है, वो भौतिक चीजों से अनासक्त हैं, लेकिन अपने जीवों से। वो खुद बोला ना उन्होंने 9:29 में कि मैं ये भजन तितु, क्या बोला, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, लेकिन मत भक्ता, ये जो मेरे भक्त होते हैं, मई तेषु चाप्यम, अगर उनका कोई किसी से सरोकार नहीं होता, अनासक्त होते, तो फिर ऐसे क्यों बोलते। तो ये भौतिक चीजों और आध्यात्मिक चीजों में डिफरेंस बताए। कुछ लोग इस श्लोक को पढ़ के क्या बोलेंगे कि भगवान निराकार है, सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सर्वेंद्रिय उसके इंद्रियों के वो मूल तो है, लेकिन उनकी इंद्रियां हैं ही नहीं, तो इसको निराकार की ओर ले जाएंगे ना। लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते ऐसा नहीं है, वो निराकार नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए भगवान को, वो साकार है, लेकिन हमारे जैसे भौतिक कलमश से ग्रस्त नहीं है। आशा है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।